जीरो
ये जिनों की इस हिसाब से बात, जिस तरह आप कह रहे थे कि इंसानों के पास जिन अच्छे भी होते हैं बुरे भी, तो ये जो मोक्कल होते हैं जो जो लोग कब्जे नहीं करते, ये क्या सही
देखिए, मोक्कल नहीं, मोक्कल, मोक्कल, मोक्कल का लफ्ज क्या है भला? इसके अंदर छुपा हुआ क्या? मोअक्कल, जी, अकला से खिलाते पिलाते, इनको अपना हाथ अपना कर लेते हैं ना जी। अब आपका सवाल ये कि मोक्कल के, देखिए कि जिन्नात अपनी जगह है। अब आप सोचिए, आप इंसान है ना, हम आजाद है ना, और अल्लाह ना करे कोई इंसानों के किसी बच्चे को अगवा करके ले जाए और उसको अपने हाथों में रखे और उसको भीख मंगवाने पे लगा दे या उसे गलत काम कराए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। इसी तरह जिन आजाद हस्ती है, अल्लाह ने उनको खुली छुट्टी दी। जब इंसान उनको कैद करना चाहते हैं तो वो माइंड करते हैं, बात वैसे। अब आम हालात में जो जादू टूना करते हैं, जिनके किस्से आप बहुत सारे सुन चुके हैं, वो क्या करते हैं? इन जिन्नों को काबू में करते हैं। क्यों? ताकि अपना मुवक्कल बनाए, खिलाएं पिलाएं, उनकी बात माने, उनको बनाए, ताकि वक्त पड़ने पे उनसे काम ले सके। तो जिन कभी खुश होंगे उनसे? और जिन्नों को अपना मुवक्कल बनाने के लिए इनको बहुत पैरे देने पड़ते हैं अपने। सूरह जिन पढ़ेंगे और इसी तरह से चिल्ले काटेंगे ताकि हम जिन्नों की बुराई से बच सकें। इसके बरक्स आप कुरान पढ़ें, आपके पास जिन सुनता है कोई तो उसको कुरान अच्छा लगता है। इतने वाकयात मैं आपको सुनाऊं तो आप मदरसों में जाना भूल जाएं, यकीन करें। जहां कुरान हिफ्ज किया जाता है, जहां बच्चियां, बच्चे या लोग बड़े जो भी रहते हैं, वहां अमूमन ऐसे वाकयात होते हैं। यानी बचपन के सुने हुए वाकयात है, लेकिन इस तरह की बातें सुनी हुई है कि जैसे सब बच्चे थे, वो किसी मदरसे में थे लड़के, तो वो कहते थे कि जी रात को वहीं सोते थे, हॉस्टल था। तो कहते हैं कि एक दिन कमरे में रात को सारे लड़के थे, तो सारे पढ़ रहे थे, अब सोने का वक्त आ गया। तो अब ये था कि लाइट बंद करो, वो कह रहा था तुम करो, वो कह रहा था तुम करो, वो कह रहा था तुम करो। अब वो आपस में लड़के जिस तरह करते हैं, तो इतने में उनमें से एक जो था ना, उसने बेड पे लेटे हुए यूं हाथ किया, तो उसका जो लंबा होता गया होता गया, तो लाइट बंद हो गई। तो अब सारे बिस्तर से उठ गए होंगे ना, ऐसा होता है। यकीन करें जिन्नात होते हैं ऐसे। एक हमारे पास चौकीदार बाबा जी थे, बहुत ही अच्छे थे वो, उनका ताल्लुक मर्दान से था। तो वो हमारे फैक्ट्री में आते थे, तो उनके पास गांव में एक जिन था, उसका नाम बिरदास, जबरदास कुछ है। कहते हैं कि वो जिन बहुत छोटा सा हमारे घर में आया था और अभी भी है। यानी आप ये कराची में थे और वो मर्दान, उनका गांव, आपको पता है कि अगर आप ट्रेन से भी जाएं तो शायद 24 आवर्स का रास्ता है, गाड़ी में भी है। तो ये खान बाबा जब कभी गांव जाते थे तो ये कहते थे कि मैं वहां बैठ के उसको कहता हूँ, जाओ देख के आओ सेठ साहब क्या कर रहे हैं। तो बताता था कि सेठ साहब ये 15 मिनट में मर्दान से कराची जाके आपको देखता था, फिर वापस आके मुझे बताता था कि साहब जो है वो अपने ऑफिस में बैठे हुए काम करें। फिर वो उसे का फोन करता था, साहब आप अपने ऑफिस में, इधर है वो, क्या मुझे उसका नाम मेरे दिमाग में घूम रहा है, उस जिन का नाम था। अब वो बच्चा सुन के घर आया था, वो उसके हमें बहुत किस्से सुनाते थे, कहते थे वो मैं तंग नहीं करता था, वो बिल्कुल हमारे घर का बच्चा, बीवी का नाम उनकी पराकोशा था। तो कहती वो जब घर का काम करती है ना, तो कभी कभी उसको लगता है कि मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और वो जैसे लहसुन छीलती थी ना, तो कहती थी कि वो छील के रख रही है, तो वो एक गिरी छील के डालती थी ना, तो उसकी जगह चार और भी डली होती थी। तो वो कहती थी अच्छा मुझे पता चल गया तुम मेरे साथ छील रहे हो। फिर वो बहुत मजे मजे की बातें बताते थे कि गांव में तो आपको पता है हर वक्त कुछ नहीं होता, कभी सर्दियों की रात है, मेहमान कोई आ गया, अब घर में माचिस नहीं है, चूल्हा कैसे जलाएं, आप क्या करें। अभी हम ये बातें कर रहे होते थे ना, तो ऊपर से माचिस की डिब्बी हमारे घर गिरती थी, कहता था फुलां ग्रोसरी स्टोर से लाया हूं, सुबह पैसे दे देना। वो बंद दीवार में से जाके ले आते थे। अब वो अच्छा था ना, वो कहता वो मैं नुकसान नहीं रहा, इवन वो कहता था वो यहां भी है। और वो जो बात मुझे उनकी याद है, वो कहते थे कि जब मेरी बीवी कुरान पढ़ती है ना तो इधर ही आके बैठता है, और कहता था खान साहब वो घी के डब्बों पे अभी भी बैठा हुआ है, मतलब वो कुछ नहीं कहता था। और वो बिल्कुल जैसे एक मोहब्बत वाला, यानी उसके साथ उसका प्यार था। तो जब तक हम उनको कुछ ना कहें ना, वो हमें कुछ नहीं कहता। ये चीज है, आप अगर पेशाब कर दे ऐसी जगह पे जहां जिन सो रहा हो, या उसके खाने को खराब कर दे, तो फिर तो वो करेगा ना। तो लिहाजा इन सारी चीजों के ऊपर, यानी मुझे ऐसे लगता है कि जैसा आपका तर्ज अमल होगा ना, वैसा इन सब का भी होगा। और फिर इंशाल्लाह ताला जब हम सुबह शाम की दुआएं पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं ना, आउज़ु बिकलिमात अल्लाह तामाति मिन शर्री मा खलक, हर उस मखलूक के शर से जिसको आपने पैदा किया, हम पनाह में आते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह हिल्लसी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैयुन फिल अर्दी वला फिस समाई वा हुवस समीउल अलीम, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आयतुल कुर्सी पढ़िए, आपको याद है अबू हुरैरा के पास भी तो जिन्नी आया था ना, जिसने माले गनीमत की चोरी करनी चाहिए, खुद ही सिखा गया कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं देगा। तो सिंपल है, सबसे बड़ी बात जो आपने अभी सीखी है ना, वो ये कि आपने इनका डर खत्म करना है। आप डरेंगे तो ये आपके ऊपर असर करेंगे। अब ये जो जिन चिमट जाते हैं वो क्या है? असेब है, साया नजर आता है, बोझ है। सिर्फ वही है कि आप चूंकि वीक होते हैं तो वो आपके ऊपर असर करेंगे। मसलन जैसे बैक्टीरिया फैलता है या वायरस फैलता है तो सब तो नहीं बीमार होते ना। कौन बीमार होता है? जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। तो बस ये जिन्नात वगैरह जो है, इनसे बचने का तरीका ये है कि नंबर एक, इंसान अपना अकीदा पुख्ता रखे और अल्लाह का डर हो, तहारत हो, पाक साफ रहे, रिज़्क़ के हलाल का एहतमाम करें। जितना तौहीद में आप पक्के होंगे, जितना आपका अल्लाह पे ट्रस्ट ज्यादा होगा, उतना ये आपसे डरेंगे, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह इंसानों को आप कहते हैं ना इत्ता किल्ला, आप जिन्हों से कहें, आपने फरमाया कि किसी खाली जगह पे आओ तो वहां आकर एकदम ना पड़ाव डालो, बल्कि वहां ऐलान करो कि अगर कोई जिन जहां है तो वो यहां से चला जाए। मैं उसको अल्लाह के नाम पर कहता हूँ कि इस जगह को खाली कर दे। कहा अगर वो अल्लाह से डरने वाला होगा तो चला जाएगा। ऐसी वाकयात मैंने सुने कि किसी को शक था उनके घर के किसी कमरे में कोई इस तरह का असर है, कोई जोर है, तो अब खौफ तो आता ही। तो वो कहती कि मैंने वहां जाकर ऊंची आवाज से कहा कि देखो अगर तुम अल्लाह से डरते हो ना तो मेरा घर खाली कर दो, मैं तुम्हें 3 दिन का मौका देती हूँ। कहो चले जाएंगे। इसी तरह कहा कहीं सांप को देखो तो उसको ना मारो, बल्कि उसको कहो जाके कि सांप अगर तू जिन है तो तू यहां से चला जा। 3 दफा उसको कहें, अगर वाकई वो जिन होगा तो वो चला जाएगा, और अगर वो जिन था और आपने उसको बगैर ये कहे मार दिया तो आपको नुकसान देगा। इसके बेशुमार वाकयात मौजूद हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों से अपने आप को दूसरी तरफ लेने की जरूरत है, और इन चीजों को बहुत सोचना भी नहीं चाहिए। अपने आप को सीधा सीधा रखें, और अगर कहीं कोई नजर भी आ जाए तो उससे घबराने की कोई बात नहीं होती। आप यहां से ये तो देख ही रहे ना कि आप मखलूक है। फर्क सिर्फ इतना ही है ना कि अल्लाह ने उनको जिस्मानी ताकत ज्यादा दे दी, जहनी ताकत उनके पास भी ज्यादा कोई नहीं है। इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। एक वाकया मैं सुन रही थी कि एक शख्स किसी को मिला और उसने ऊन का जुब्बा पहना हुआ था, तो उसने कहा ये तुमने क्या ऊनी कपड़े पहने? कहता ये तो मैंने पिछले 5,000 साल से पहने हुए, मैं इसी जुब्बे में तो मूसा को मिला, इसी में तो मैं ईसा को मिला, मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल इस जुब्बे में अटेंड की हुई है, तो तुम्हें क्यों हैरत हो रही है? तो लंबी उम्र है इनकी, कद काट लंबे होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों से बचाए और हम अपने आप को इन चीज़ों से महफूज समझते रहे। फिर आखिरी चीज़ देखिए जो इसकी दावत में थी, वल्लविस्तकाम वलत्तरीकत, आयत 16 देख ले। ये सबक जिन्नात को समझ आ रहा है कि जो लोग हिदायत पे जम जाते हैं अल्लाह उनको दुनिया की नेमतें भी दे देते हैं। आज हम उम्मत मुस्लिमा किस चीज़ की सजा काट रहे हैं? हिदायत के तरीके पर इस्तकामत ना रखकर छोटी छोटी बातों पे तो हम गिर जाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर आप देख लीजिए अल्लाह की तरफ से जो पकड़ और जो मुश्किलात आती हैं, वो किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पीछे आपने सूरह नूह में भी पढ़ा था कि अनिस्तगफिरु रब्बकुम, बख्शिश मांगो अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा। यहाँ इस्तकामत के रफ में कह दिया। आप कह लें कि सूरह नूह में इस्तगफार के फायदे थे, तो यहाँ इस्तकामत के फायदे हैं। और जो बंदा अल्लाह की याद से और अल्लाह के जिक्र से उसकी नसीहत से मुंह फेरता है तो फिर उसको छोड़ दीजिए। और नबी सल्लम के हाल पर उनको रहम आ रहा है कि ये लोग आपकी कदर नहीं करते और आपको तकलीफ देते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आयत नंबर 20 से अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला मुखातिब करें, यानी जो जिन की बात थी वो यहाँ ख़त्म होती हुई दिखती है कि उन्होंने सारी तकरीबन बातें बताकर मस्जिदों को सब कुछ अल्लाह के चीज़ें कहने के बाद अब बात पूरी की। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से, और बात कहते हैं कि अगला कलाम भी जिन का ही है, कुछ भी हो सकता है, बात एक ही है। अगर जिन की बात थी तो उसने पैगाम को ठीक पा लिया, और नहीं थी तो अल्लाह के नबी को क्या कहा जा रहा है? आयत 20, कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला अशरिकु बिही अहदा, कह दीजिए बेशक मैं तो पुकारता हूं अपने रब को और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। जिन्नों ने पीछे जो बात कही थी उसकी तस्दीक है। अब यानी आप ऐसे समझे कि उनका पेपर चेक किया जा रहा है और उनको सही मार्क्स दिए जा रहे हैं कि वाकई लन नुशरिक बिरब्बी अहदा की बात दुरुस्त थी। तो आप ये नबी कह दीजिए कि मेरे दीन में यही है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं बनाना। फिर दूसरी बात, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रम वला रशदा, कह दीजिए कि मैं नहीं इख्तियार रखता तुम्हारे लिए जरर का और ना किसी भलाई का। हम क्या कहते हैं? जो अल्लाह के नबी चाहें वो हो सकता है। अल्लाह क्या अकीदा सिखा रहे हैं अपने नबी की जुबान से कि लोगों को बता दो मैं तुम्हें ना तो नुकसान दे सकता हूं और ना कोई फायदा दे सकता हूं जब तक के अल्लाह ताला ना चाहे। तो हमारा भी अब यही अकीदा है ना, नबी कब फायदा देते हैं और कितना देते हैं? जब और जितना अल्लाह का हुक्म हो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगली बात, कुल कह दीजिए इन्नी बेशक मैं, लन युजीरनी मिन अल्लाही अहदुन, कोई मुझे पनाह दे नहीं सकता अल्लाह की पकड़ से, यानी अगर मुझे अल्लाह पकड़ ले तो तो मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता, वलन अजिद मिन दूनी, और नहीं पाता मैं उसके सिवा मुल्तहदा कोई पनाह देने वाला। लहद से, यानी नबी सल्लम के जरिए से बताया गया कि अगर अल्लाह के नबी के ऊपर भी कोई तकलीफ आ जाए, अल्लाह ताला कोई मुश्किल डाल दे, तो कोई आपको पनाह नहीं दे सकता, हाँ मगर इल्ला बलाग मिन अल्लाह व रिसालतिही, मेरा काम इसके सिवा और कुछ नहीं कि अल्लाह की बात और उसके पैगामात को पहुंचा दूं। यानी मेरा मुकाम क्या है, तबलीग का, दाई हूं, मुबल्लिग हूं, मैं बात पहुंचाता हूँ अल्लाह की और जो वो कह देता है। वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानेगा, फइन्नलहू नार जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नम की आग है, कब तक, खालिदीन फीहा बदा, हमेशा रहने वाले उसके अंदर। यानी जब लोग अल्लाह के नबी के बारे में मनगढ़ंत अकायद रखेंगे और शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद उनको अपना अंजाम जो है वो देख लेना चाहिए, और वो जहन्नुम में एक दो दिन के लिए नहीं, बहुत तवील अरसे तक के लिए रहेंगे। और हत्ता, यहां तक के इजा राउ, जब वो देख लेंगे क्या, मा युअदूना, जिसका वो वादा दिए जाते थे, फस यालमूना, पसंद करीब वो जान लेंगे क्या, मन अदफु नासिरन, कौन है बहुत कमजोर मदद के तौर पे, यानी किसके मददगार कमजोर हैं, वह अकल्लु अददा, और कम है अदद के एतबार से। एक खुलासे में इसको पढ़ें तो क्या आयत बनी, ये लोग अपनी इस रवि से बाज ना आएंगे, यहां तक कि जब वो इस चीज को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, यानी जिनको नहीं मानना ना, वो अपनी मौत के वक्त तक भी नहीं मानेंगे। फिर जब इनकी पकड़ का या इनकी मौत का वक्त आएगा, तो उस वक्त इनको पता चल जाएगा कि किसके मददगार कमजोर है और किसका जत्था तादाद में कम है। मक्का वाले जो सरदार थे ना, वो अल्लाह के नबी से कंपेयर करते रहते थे खुद को, ऐसे ही उनका ख्याल क्या था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, हमारे फॉलोअर्स बहुत हैं, हमारे सपोर्टर्स बहुत हैं, हमारे फैन बहुत से हैं, और हमारा गिरोह बड़ा, और ये मोहम्मद के सल्लम चंद गरीब लोग इनके साथ लग गए हैं, ये चंद नए लोग और जज्बाती से लोग हैं जो इनके पास आ गए हैं, तो उसकी जवाब में अल्लाह कह रहे हैं कि आज चंद मुट्ठी भर हैं, लेकिन यही कल जब इस्लाम की इमारत की बुनियादों में लगेंगे, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह काम लेगा उसको ये देख लेंगे। देखिए बाज़ दफ़ा लोग पीपल कॉन्शियस हो जाते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी नहीं चाहिए। चंद लोग थे ना, आप मक्की दौर का खुलासा देखें तो जब अल्लाह के नबी ने हिजरत की ना, तो 100 से 200 के बीच में टोटल लोग थे। अगर हम हजरत नूह के हालात पे बात करते हैं कि 950 साल में 70-80 लोग थे, तो मक्की दौर में अल्लाह के नबी को कितने मिले, गिनती के थे। यहाँ एक छोटी सी अमल की बात है, जब दावत अपने बिल्कुल इब्तदाई मदारिज में होती है ना, तो लोग थोड़े होते हैं, मशहूर भी नहीं होते, कोई उनके नाम के साथ कोई शोहरत भी नहीं, कोई मीडिया भी नहीं, कोई उनको लोगों का सहर भी नहीं है। ऐसे वक्त में जो हक समझते हुए साथ लगते हैं, और वो थोड़े लोग अगर वो सारी खूबियों से मुत्तसिफ हों जो सहाबा में थी, तो वही थोड़े बाद में बहुत बड़ों बड़ों पे गालिब आ जाते हैं। आप इसको यूं समझिए, कभी घर बनता देखा हो, इमारत के बनने में सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज पे होती है, फाउंडेशन, बुनियादें, और जब बुनियादें पड़ती हैं तो उस वक्त क्या चीज चाहिए होती है, शीशा, क्रिस्टल, एक्सेसरीज, फानूस, क्या चाहिए, लोहा चाहिए, लोहा, पत्थर, बजरी, फिर क्या चाहिए होता है, बड़े बड़े बिल्डोजर, कूट 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 के भर दो। आप यहां तो हम दो चार मंजिला बिल्डिंगें देखते हैं, आपको पता है कि आज दुनिया में 100-100 मंजिला बिल्डिंग भी बनती है, और मैं जब उसको देखती तो खौफ खाती हूँ, ये बनी कैसे अगर ये पिलर टेढ़ा हो जाए। लेकिन जब बनता हुआ देखें तो लोहा कूट कूट के अंदर डाल रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म से फिर वो पिलर खड़ा रहता है, वरना वो फिर भी ना खड़ा हो। इसी तरह जो लोग बुनियादों में जाते हैं ना, वो पत्थर के होने चाहिए, नरम मिजाज, नाजुक मिजाज, नाजुक तबा, वेरी सेंसिटिव, फिर वो कहीं ऊपर लग जाएंगे, खिड़की की जगह पे उनको लगा दें, फ्रंट के शीशे पे लगा दें, आप उनको स्टेज बना दें किसी बिल्डिंग का, ऊपर उसका मोनोग्राम बना दें, इट्स ओके, वो चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बिल्डिंग का सबसे सिक्योर हिस्सा क्या होता है, क्या चीज नहीं बदलती, फाउंडेशन। इसको आप खाना काबा पे लेके सोचें, आप कहते हैं कि काबा की बुनियादें आज भी वही हैं जो दुनिया में बनते वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों से बनवाई थी, हजरत नूह के दौर तक तो वो वैसे ही रहा था जैसे था, फिर तूफान नूह आया तो वो सब बह गई, सब बिल्डिंग ऊपर से खत्म। एक वक्त है कि इसके ऊपर बिल्कुल तहें चढ़ गई थी। तो आप कहते हैं कि हम तो ये सुनते आए अब तक कि हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया, उनको क्यों हम कहते हैं कि वो बानिए काबा है? तो उसकी वजह क्या है कि तूफान नूह में ये गायब हो गया था कुछ अरसा, दुनिया में काबा इस तरह नहीं था जैसे आज है। अल्लाह ने जब ये खिदमत लेनी थी इब्राहिम से, हुक्म क्या दिया, जाओ काबा ढूंढो और बनाओ? नेवर। कैसे सिलसिला शुरू हुआ? आप देखिए मेथेडोलॉजी समझिए ना, तो आपको नबियों के हालात से मिलती हैं। अल्लाह को तो पता था ना काबा किधर था, इब्राहिम को कोई नहीं था पता। बरसों की दुआओं और बुढ़ापे का सहारा एक बच्चा और बीवी, अल्लाह इब्राहिम को कहते जाओ इसको यहां छोड़ो। आप बात को समझिएगा, अगर उस दिन अल्लाह ने इब्राहिम को ये कहा था ना, इब्राहिम फिक्र नहीं करो, तुमसे अपना घर बनवाना है, उसके लिए जरा तुम्हें उस इलाके में छोड़ रहा हूँ, फिर कुछ अरसे बाद तुम अपने बेटे से घर बनाओगे, फिर क्यामत तक लोग आएंगे तो तुम्हारे गुण गाएंगे, तो इब्राहिम के लिए कितना आसान होता। जब रिवॉर्ड सामने होते हैं ना और नतायज सामने होते, तो मुश्किलें कहते पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ हम करेंगे, लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, एंथुसिज्म आ जाता है। ये नहीं कहा, कोई रिजल्ट दिए बगैर, फ्यूचर की को बात किए बगैर कहा चलो अपनी बीवी बच्चे को वहां छोड़ो। कुर्बानी घर से शुरू हुई, बहाना बनाया, इब्राहिम को कहा कि जाओ इस्माइल और उसकी माँ को छोड़ो, फिर वो वहां रहे, फिर वो सारे किस्से आप सुनते हैं, कैसे जमजम का कुआं खुला और कैसे सफा मरवा की सही हुई, अरसा चलता रहा, फिर वहां इस्माइल जवान हुए, उनकी शादी हुई, फिर वहां एक बीवी देखी, पूछी कैसी है, ना शुक्री थी का इसको तलाक दे दो, फिर दूसरी, सब सुना हुआ ना। जब इस्माइल इस काबिल हो गए कि बाप का साथ दें, तो फिर अल्लाह ने वो जगह जो थी ना वो इब्राहिम को दिखाई थी, बादल कहते हैं कि इसके ऊपर आ गया था ख्वाबों के जरिए। ये इसकी हिस्ट्री पढ़े, अभी रिसेंटली पढ़ी है ना, तो मुझे सारी बातें याद आ रही हैं। तारीख मक्का और तारीख मदीना दो बुक्स हैं दारुस्सलाम की, शायद आपके स्टॉल पे होंगी, पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी बुक्स हैं और बड़ी खूबसूरत हैं गिफ्ट में देने लेने के लिए। तो उसमें अल्लाह ताला ने फिर जगह नॉमिनेट की थी कि यहां जाके काम करो, खाना कबा बन गया। अब आप बताइए कि इतनी मुश्किलों से गुजारे बगैर इस्माइल और इब्राहिम को कहा जाता जाओ मेरा घर बनाओ, तो नहीं थे बना सकते। मेरे और आपके लिए इसमें अमल की बात क्या है, अल्लाह ताला जब कोई खिदमत लेता है ना तो उससे पहले कुर्बानी लेता है, कुर्बानियों के रास्तों से एजाजात शुरू होते हैं। मुकाम इब्राहिम को देख के हमेशा आंसू निकलते हैं। मैं सोचती हूँ अल्लाह उन लोगों के कदमों के निशान भी प्रिजर्व कर देता है जो उसके रास्ते में खड़े हुए। वही जो बात अभी पढ़ी, अल्लविस्तकामु अला तरीकती, तो अल्लाह ने कहा मेरे इब्राहिम के खड़े होने के मुकाम को मुकाम इब्राहिम बना दो, ताकि लोगों को पता चले कि इस्तकामत कितनी बड़ी दौलत है। देखिए पहली बड़ी नेमत हिदायत होती है, हिदायत मिल जाए तो उसके बाद दूसरी बड़ी नेमत इस्तकामत होती है। हिदायत ना मिली तो लुढ़कते रहेंगे, हिदायत मिल गई और आप छोड़ दें थोड़े दिन में, क्या हुआ, इस्तकामत नहीं रही ना। आप अपने ऊपर लेके सोचें, आप पहले एक चीज ढूंढ रहे होते हैं, फिर आपको अच्छी चीज मिल जाती है, आप खरीद के घर ले आते हैं, अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि अब उस चीज को पकड़ के रखो, जम के जाओ उसके ऊपर। तो हिदायत के बाद इस्तकामत बड़ी प्यारी चीज है, और जब लोग इस पे खड़े होते हैं अल्लाह उनके नाम जोड़ देता है। यही बात बता दी कि तुम्हारा रब तुम्हें इतनी आजमाइशों में डालकर पक्का कर रहा है। और आप देख ले मक्का के 100 कुछ लोगों को, आपने सीरत को पता नहीं इस एंगल से अभी पढ़ा कि नहीं, जिस जंग में अल्लाह के नबी गए, जो गजवा था, जो सरिया था, तबूक तक अक्सरियत मुजाहिदीन के साथ थी, अंसार से अल्लाह ने कुछ और काम लिया। बाद में जो लोग आते हैं ना वो दीन की इमारत का हुसन बनते हैं, पहले जो लोग होते हैं ना वो दीन की इमारत की मजबूती बनते हैं, वो दीन की इमारत बनते हैं। आप ये कह लें जैसे लोगों के पास पैसे होते हैं ना, जमा कर करा के फाउंडेशन और स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, फिर पैसे और आएंगे तो साथ साथ कभी एक कमरा सजा लेंगे, कभी दूसरा सजा लेंगे। खुशकिस्मत है वो इंसान कि जिसको अल्लाह अपने दीन के ढांचे में शामिल कर ले, लेकिन उसके लिए फौलाद है मोमिन, फिर नाजुक नामी नहीं। फिर तो आप देखें ना, जिस बिल्डिंग की बुनियादों में शीशा पड़ गया कितना खतरा है, और खूबसूरत होता है शीशा, अच्छा लगता है, लेकिन आप बुनियादों में क्यों नहीं डालते कि मजबूत नहीं होता। इसलिए अपने लिए दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे किसी जगह किसी ऐसे कोने में डाल दे कि उसके ऊपर 10 बिल्डिंगें भी बन जाएं, वो गिरें बने, लेकिन मैं महफूज हो जाऊंगी, क्योंकि हजरत इब्राहिम की नस्लों का, हजरत इब्राहिम कादर नस्ल दर नस्ल से सिक्योर है। कितनी दफा हरम बदला, दीवारें भी बदली, साइज भी बदला आगे से पीछे से, लेकिन बुनियादें वही हैं। हत्ता कि ये हतीम जो है उन बुनियादों पे, पहले हरम ऐसे था चकोर और लंबूतरा था जब हजरत इब्राहिम ने बनाया था, लेकिन जब कुरैश ने बनाया तो पैसे इतने नहीं थे कि हलाल से पैसा जमा हो और सारा बने, तो हतीम की दीवारें बस इतनी इतनी छोड़ दी कि इतना काफी है लेकिन बनाएंगे हलाल से। इतना उस दौर में हालात खराब थे कि हलाल इतना नहीं था लोगों के बस के कमरा बना सके। वहां अल्लाह ने अपने नबी को बुलाया तो कितनी बड़ी बात है। तो हिस्ट्री के साथ और सीरत के साथ जब आप चीजों को समझेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह अकबर। तो ज्यादा तादाद का मान नहीं करना चाहिए। ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे हक के साथ रख, थोड़ों के साथ और ज्यादा के साथ कुछ नहीं फर्क पड़ता। खैर, कुली नदरी अकरीब मा यतू अदून अम यजअलु लहु रब्बी अमदा। कहो मैं नहीं जानता जिस चीज का वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या मेरा रब इसके लिए कोई लंबी मुद्दत मुकर्रर करता है। कौन सी यहाँ किस चीज की तरफ इशारा है? पीछे मजाक की बात है, नबी का मजाक उड़ाते थे, मुखालिफिन तंज करते थे, ये कब आनी है क्यामत, ऐसे ही आप डराते ही रहते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं इनको बता दो मुझे क्यामत के आने का कोई वक्त नहीं पता। यहाँ करीब से मुराद क्यामत है, यानी आए जल्दी देर से आए, तुम्हारी पकड़ अभी आए, मुझे नहीं पता क्योंकि अल्लाह ने ये मुझे नहीं बताया। आलिमुल गैबी, वो गैब का जानने वाला है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, बस वो नहीं जाहिर करता अपने गैब पर किसी को भी। यानी क्यामत कब आनी है, कैसे आनी है, किस तरह किस वक्त में होगी, उसने ये बात किसी को नहीं बताई। थोड़ा सा जो बताना चाहे बता देता है, बाकी बातें वो अपने पास रखता है। हाँ मगर इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन, मगर जिसको वो चुन ले अपने रसूलों में से, यानी सिवाय उस रसूल के जिसे इसने गैब का कोई इल्म देने के लिए पसंद कर लिया। फइन्नहु यसलुकु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही रसदा, तो इसके आगे और पीछे वो मुहाफिज लगा देता है। ये बड़ी अहम बात है। ऊपर कह दिया गैब अल्लाह के पास है, रसूल बजाय खुद आलिमुल गैब नहीं होता। अल्लाह ताला जब रिसालत का फरीजा अंजाम देने के लिए मुंतखिब फरमाते हैं तो गैब के कुछ हकायक भी आपको बता दिए जाते हैं, जैसे अल्लाह के नबी को बहुत से बताए गए। ठीक है, मुहाफिज कौन से हैं इधर? फरिश्ते। यानी जब अल्लाह ताला वही के जरिए गैब के हकायक का इल्म रसूल को देते हैं तो उसकी निगहबानी के लिए हर तरफ फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं ताकि वो इल्म महफूज तरीके से रसूल तक पहुंचे, कोई आमेजिश ना हो। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं ना आयत नंबर 8 से 9 में कि अल्लाह के नबी की बेइज्जत के बाद जिन्नों को ऊपर जाने में मुश्किल होने लगी, दरवाजे बंद थे, सख्त पहरे लग गए थे और अब उनको कोई बात सुनने का मौका भी नहीं मिलता। तो लिहाजा ये बात कहकर ये यकीन दिला दिया गया कि जो कलाम नबी पे उतरता है वो महफूज कलाम है। इसीलिए तो आप कहते हैं कि रूहुल अमीन कहा जाता है ना किसको? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। ठीक है, तो लिहाजा आखिर में क्या फरमाया गया कि ये कलाम बड़ा यकीनी है, लिया लमा, ताकि वो जान ले, अन कदब लगू, कि उन्होंने पहुंचा दिए रिसालाती रब्बी, पैगामात अपने रब के, वह अहात बिमा लदईहिम, और अहाता किया उसका जो उनके पास है, यानी वो इनके पूरे माहौल का अहाता किया हुआ है। वाहसा कुल्ल शैइन अददा, और उसने हर एक चीज को गिन गिन कर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इस आयत का लफ्जी तर्जमा मुश्किल है, और अगर आप गौर से ना सुने, थोड़ी सी तवज्जो इधर से उधर हो जाए ना, तो आप आयतों का मफहूम ऐसे अंदाजे से नहीं जान सकते जैसे आम आयतों पे होता है। तर्जमे के एतबार से थोड़ी सी मुश्किल सूरत है। अब इस आयत में जो आखिरी हमने पढ़ी, इसके 3 मुख्तलिफ मानी है। लिया लमा, कौन जान ले कि उसने पहुंचा दिए पैगाम अपने रब के। पहली बात यह कि रसूल जान ले कि फरिश्तों ने इसको अल्लाह के पैगाम ठीक ठीक पहुंचा दिए, ये पहला मानी है। दूसरा मानी, अल्लाह तला ये जान ले कि फरिश्तों ने अपने रब के पैगाम इसके रसूल तक सही सही पहुंचा दिए। ठीक है, और तीसरा ये मानिए कि अल्लाह ताला ये जान ले कि रसूलों ने इसके बंदों तक अपने पैगाम ठीक पहुंचा दिए। देखिए मैं इसको आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाती हूँ कि जब आप कोई पैकेज किसी जगह डिलीवर करते हैं तो 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक जिस पोस्ट ऑफिस में आप जाके देते हैं, एक वो जिधर से वो डिलीवर होना है यानी जिस जगह से वो निकलना है, और तीसरे आप खुद गवाह होते हैं कि आप खुद देने गए थे। कभी कोई पैकेज लॉस्ट हो जाए या पैकेज टूट जाए, या चले आप एयरपोर्ट की बात करें, आप सामान बुक करवाते हैं, एंड पे सामान नहीं मिला, टूटा हुआ निकला, आप काउंटर पे जाते हैं कस्टमर हेल्प के, तो वो चेक करके क्या बताते हैं आपको? आपका लंदन एयरपोर्ट से चढ़ा ही नहीं, वो कहेंगे नहीं आपका इधर से तो चढ़ गया क्लियर है, अच्छा आपका जद्दा से वापस नहीं आया, कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। इस एक आयत में पूरी सूरत का जो थीम था ना उसको क्लियर कर दिया गया कि इतना सिक्योर इल्म है ये कुरान का कि अल्लाह भी नजर रखता है कि फरिश्ता ठीक जाके पहुंचा रहा है, ठीक है। फरिश्ता जब नबी को देता है तो भी देखता है कि फरिश्ते ने बात में कमी तो नहीं की, और रसूल जब आगे लोगों को पहुंचाता है तो तीनों जगह इसकी ऑब्जर्विंग, यानी आप कहें कि कीन ऑब्जर्वेशन है इस पैगाम पे कि कोई इसको बदल ना दे। सुभान अल्लाह, बहुत कीमती डॉक्यूमेंट्स जब इधर से उधर किए जाते हैं ना तो उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं। यही बात है कि यहाँ पहरे हैं फौज के और फरिश्तों के, कि इसमें कोई कमी बेशी ना हो, बाल से ज्यादा बारीक कोई इसमें कमी बेशी नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसे लगता है कि सूरज जिन पढ़ने के बाद जहां जिन्नों से कुछ दोस्ती हुई है, खौफ कम हुआ है, वहां कुरान की वैल्यू भी बढ़ी है। आपको महसूस हुआ है इस पूरी सूरत को अगर आप एक थीम देना तो कुरान और जिन्नात दोनों की असल खुल के सामने आ गई। जिन्नात को कुरान की अहमियत का कितना एहसास था, और इसी तरह से बाकी सारी चीजें। तो हमें भी अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि हम भी इस कुरान को पढ़ने के बाद इसी तरह इसको अब्सॉर्ब करें जैसे जिन्नों ने किया, और को कमी बेशी किए बगैर इसके पैगाम को मनोअन पेश कर दे। और आप ये भी देखिए यहां से कि हम इंसान इंसानों से सुनते हैं तो ज्यादा कम्युनिकेशन है ना, हारमनी है। जिन ने नबी से सुना यानी इंसान से सुना, और आगे जाके वो जिन्नों को सिखा रहा है। थोड़ा सा समझिएगा फर्क, मैं भी उर्दू बोल रही हूँ, आप भी उर्दू बोल रहे हैं, आप मुझसे ले रहे हैं, उम्मीद है ना कि आपको मेरी उर्दू तो समझ आ ही रही है। आप यहां से उठती हैं जाके आप फिर किसी उर्दू जानने वाली सिस्टर्स को सिखाने लग जाती हैं, इट्स नेचुरल। अब एक सूरत है, आप मुझसे ले रही हैं, मैं उर्दू में हूं, आप उसको अखज करती हैं और आपका माहौल इंग्लिश का है, आप यहां से उठती हैं तो आप इंग्लिश में जाके वो बात कंडक्ट करती हैं, मुश्किल होगा, निस्बतन मुश्किल होता है सेम जुबान से। इसके बावजूद यहां तो चलिए लैंग्वेज का फर्क है ना, जिन्स तो एक ही है ना, जिन्नों के लिए एक इंसान की जुबान से बात सुन के जिन्नों को कंडक्ट करना ये कितना मुश्किल मरहला था। और आप एक और चीज नोट करके देखें कि मक्का वालों ने नबी सल्लम पे क्या इतराजात किए थे, बशर बशर बशर, हम इंसान की माने, इंसान हमें इंसान फायदा देगा, मक्का ले क्या चाहते थे, फरिश्ता आए। और कितने लोग हिदायत से सिर्फ इसलिए पीछे रह गए कि वो नबी की जात में खो गए कि ये इंसान है या फरिश्ता क्यों नहीं, और फरिश्ता होता तो ये होता। तो जिन्नों ने चूंकि हिदायत लेनी थी ना, जिसकी नजर हिदायत पे होती है ना वो ये नहीं देखता कौन दे रहा है, वो कहता है मुझे मिल क्या रहा है, मुझे सेहत मिल रही है कि नहीं। आपको दवा चाहिए ना, आप डॉक्टर का रंग नस्ल कुछ नहीं देखते, आप दवा देखते हैं। तो इससे मेरे और आपके लिए अमल की बात क्या निकली कि अगर मुझे कुरान से हिदायत लेनी है ना तो ना तो लैंग्वेज बैरियर है और ना उम्र बैरियर है और ना माहौल बैरियर है। आप फोकस करके अपने आप को कुरान से हिदायत का नुक्ता ले लें, कहने वाला कोई भी हो, आपको बात समझ आ गई, आपको उसमें कुछ अपने लिए खैर मिल गई, दैट्स इट। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इस पे गौर व फिक्र की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.